कहा यह जाता है कि कुछ ऐसी आयात हैं जो मनसूख तिलावत हैं लेकिन उनका हुक्म बाकी रखा गया, और हम ये पढ़ते हैं अपनी जो बाज़ रिवायतों की किताबें हैं उनमें कुछ इस तरह की आयात भी बयान कर दी जाती हैं कि आयत तो नाजिल हुई थी कुरान में थी फिर निकाल दी गई लेकिन इसका हुक्म बाकी है, तो क्या महफूज की गई थी
ये भी
ज़रूर?
बिल्कुल उसी तरह का अफसाना है, कोई हकीकत इसकी नहीं है। कितनी खिलाफ अकल बात है, हुक्म बाकी है तो आयत क्यों निकाल दी जाएगी। कुरान मजीद में तबीन की आयतें मौजूद हैं, कुरान मजीद में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो उस वक्त की सूरत हाल में
यानी
पेश
वक्ती
आई।
अहकाम भी सारे।
जाहिर है वो सब की सब चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह अगर कुरान मजीद ने तदरीज के तहत किसी चीज़ के बारे में एक हुक्म दिया और फिर उसके बाद उस हुक्म में कोई तब्दीली की, यानी ये तब्दीली अल्लाह ताला के हाँ तब्दीली नहीं है बल्कि लोगों को किसी चीज़ का पाबंद बनाने के लिए एक तदरीजी अमल की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें भी कुरान में मौजूद है। यानी कुरान मजीद ये बताता है कि पहले मरहले में जब लोग अभी आदी नहीं हुए थे तो हमने ये इजाज़त दी कि अगर रोज़े छूट गए हैं रमज़ान के रोज़े तो बाद के दिनों में रोज़े रखो, ये अच्छी बात है, ना रखो तो एक मिसकीन को खाना खिला दो अगर इसकी हिम्मत रखते हो। तो जाहिर है कि ये हिदायत फ़ौरन बाद कुरान मजीद ने ये बताया है, यानी उसके बाद की आयात है कि कुछ अरसे के बाद ये हिदायत ख़त्म कर दी गई, अब आपको रोज़े ही रखने हैं। तो सवाल ये है कि वो ऊपर का हिस्सा वहाँ बयान करने की क्या ज़रूरत थी
जो खत्म हो चुका है
जो
असल
खत्म हो चुका है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि देखिए कुरान मजीद में एक मकाम पर यह है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे और बाज़ मुनाफिकीन आके आपके साथ खलबत में बात करने की दरख्वास्त करते थे कि हम अकेले में बात करना चाहते हैं, तखलिये में। उन्हें मौका दे दिया जाता था, बाद में वो बातें मनाते। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी, हमने ये सुना था, इससे बड़े फितने फैलते। तो अल्लाह ताला ने कहा कि चूंकि ये बिल्कुल बखील है तो इसलिए इनको पाबंदी आयद कर दी जाए कि आइंदा जो भी खलबत में मुलाकात के लिए वक्त मांगेगा वो कुछ सदका करके आएगा, किसी गरीब की मदद करके आएगा, अल्लाह की राह में कुछ खर्च करके आएगा, ये हुक्म दिया गया। जाहिर है कि ये गरीब मुसलमानों पर भी शाक गुजरा जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे, अपनी बातें करते थे। तो अल्लाह ताला ने इसको कुछ देर के बाद उठा लिया।
अच्छा,
तो ये बात कही गई, ये उठा लिया गया। वो उठा लिया गया कि आयत यहाँ से शुरू होती है आशफक्तुम, यानी तुम्हें गिरा गुजरी ये बात, तो अब हम इजाज़त दे रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कुछ पहली बात को बयान करने की क्या ज़रूरत थी। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात, उनके साथ क्या मामला पेश आया, वो वाक़या जो सूरह नूर में बयान हुआ है तोहमत लगाने का, उसका क्या ताल्लुक था हमारे साथ। तो कुरान मजीद ने उस पूरी की पूरी सीरत को महफूज किया है, यानी जो कुछ उस वक्त अल्लाह की किताब की हैसियत से नाजिल हुआ वो सब हमारे पास मौजूद है, इसलिए इसमें भी कोई सवाल इस बात का नहीं। खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन सब चीज़ों की तरदीद कर दी है, यानी ये बता दिया है कि इसकी हिफाजत हम कर रहे हैं, इसको पढ़ के हम सुना रहे हैं, इसके भूल जाने का कोई इम्कान नहीं सवाए इसके कि हम ही ये फैसला करें कि आखिरी किरात के मौके पर किसी चीज़ में कोई तब्दीली कर दें वो हम करेंगे, कोई और करने की जसारत नहीं कर सकता, तरतीब हम देंगे, दोबारा सारे के सारे कुरान को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको उसी की पैरवी करनी है। इसकी शरो तफसीर के मामले में भी अगर कोई सवाल होगा तो इन्ना अलैना बयाना, वो भी हम ही करेंगे। इसलिए ये सब कुछ अल्लाह ताला के अपने अहतमाम में हुआ है। तो अल्लाह ताला एहतमाम कर रहे हों, पहरे आसमान पर लगे हुए हों, जिन्नात तक कोई राह ना पाए उसके अंदर और बकरी उसकी आयत खा जाएगी और वो मनसूख हो जाएंगी उसकी आयतें और वो कुरान मजीद से निकाल दी जाएंगी और उनके हुक्म बाकी रहेंगे, ऐसी खिलाफ अक्ल बातें हमारे यहाँ रिवायतों की बुनियाद पर आम हो गई, इनकी कोई हकीकत नहीं है। कुरान इस तरह इस शान के साथ सहाबा-ए-किराम ने महफूज किया।